السلام عليكم ورحمة الله. أذان دي دي شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سورة بني إسرائيل آية 82 آج کے مضمون سے پہلے میں دو ممالک کے سالانہ جلسہ سالانہ سے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں. اول جماعت احمدیہ یو ایس اے کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ ان کا جلسہ سالانہ 23 جون بروز جمعۃ المبارک یعنی آج شروع ہو رہا ہے, 3 دن تک جاری رہے گا. دوسرے جماعت احمدیہ انڈونیشیا کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ ان کا جلسہ سالانہ بھی 23 جون سے شروع ہو کر 3 دن تک جاری رہے گا. ان دونوں ممالک کے جلسہ سالانہ میں شریک تمام حاضرین کو, خواہ وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, ان کو میں آپ سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں, اور اس مبارک موقع پر ان کو اس شمولیت میں سعادت پر مبارکباد دیتا ہوں. وہ تمام جلسے جو خدا کی خاطر منعقد ہوں اور کوئی غرض نہ ہو, उनमें शमूलियत भी एक बड़ी सआदत हुआ करती है, और सिर्फ उनकी शमूलियत नहीं जो नेकी के गरज से आते हैं, ऐसे बाबरकत लोग जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, उनके साथ मुसाफिर भी अगर आप बैठे तो उसको भी बरकत मिल जाती है। बस ये जो मज़मून है ये मेरे नफ्स का बनाया हुआ नहीं, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी है कि अल्लाह के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होने वालों के पास बैठने वाले, खा वो उस नीयत से ना भी बैठे हों, वो भी बरकतों से हिस्सा पा जाते हैं। बस अल्लाह उन सब के लिए जो इन जलसों में शमूलियत फरमा रहे हैं, ये शमूलियत दीन दुनिया हर लिहाज से बबरकत फरमाए। जहाँ तक इनके नाम पैगाम का ताल्लुक़ है, वो पैगाम मैं इस खुतबे के मज़मून ही में दूंगा जो पिछले खुतबात की एक कड़ी है, और ये सिलसिला जो चल रहा है ये सिफात बारी ताला या अस्माए इलाही का सिलसिला है। आज मैं गुज़श्ता जुमे के मज़मून ही को आगे बढ़ा रहा हूँ, यानि हक़ ज़ात से मुतल्लिक मैं मज़ीद कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। अल-हक़ खुदा का नाम है, जैसा कि मैंने बयान किया था, सूरह फातिहा की तमाम सिफात से ये नाम ताल्लुक़ रखता है, और उन सब के मिलने से, इज्तिमाई असर से कामिल हक़ का तसव्वुर ज़हन में उभरता है। वो ज़ात जो उन तमाम सिफात हसना से मुज़य्यन हो, जो हम से शुरू होकर मालिक यौम-ए-दीन तक बयान हुई हैं, उनका लाजमी और क़ती नतीजा निकलता है कि वो ज़ात हक़ है, हक़ के सवा हो ही नहीं सकती। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है ये तो समझ आई, मगर हमें कैसे फ़ायदा पहुँचेगा और हम हक़ से ताल्लुक़ जोड़कर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, और क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं हम पर जो हमें अदा करनी होंगी जिसके नतीजे में हम हक़ का फैज़ पा सकते हैं। इस सिलसिले में दो हिस्सों में मैंने अपने मज़मून को तकसीम किया है। एक वो जहाँ हक़ का ताल्लुक़ गैरों से होता है, यानी इन मानों में कि वो लोग जो हक़ के बंदे बन जाते हैं, उनको गैरों के मुकाबले पर क्या क्या फतूहात नसीब होती हैं, इसका एक ताल्लुक़ है जो उसको हम दावत इल्लाह कहते हैं, उस मज़मून से ताल्लुक़ है। और दूसरा तरबियत से ताल्लुक़ है कि हक़ ज़ात से ताल्लुक़ जोड़ा जाए तो इंसान के अंदर क्या क्या पाक तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और होनी चाहिए, और उनके नतीजे में उसके अंदर एक अंदरूनी इनकलाब क्या बरपा होता है। तो पहले मैं दावत अल्लाह के ज़िक्र को लेता हूँ, और चूँकि ये दोनों ममालिक जिनके जलसों का आज ऐलान हुआ है, दावत अल्लाह के लिहाज से अभी बहुत हद तक पीछे हैं, और अहमियत के लिहाज से बहुत ही अहम ममालिक हैं, दुनिया की तकदीर पर असरानंदाज होने वाले ममालिक हैं। अमेरिका का ताल्लुक़ तो आजकल सब दुनिया से है, और दुनिया में अब अकेली ही सुपर पावर बनकर उभरा है, लेकिन इंडोनेशिया का ताल्लुक़ मशरिक़ बईद के तमाम ममालिक से गहरा है, और इंडोनेशियन कौम इतनी अजीम है तादाद के लिहाज से भी और सलाहियतों के लिहाज से भी, कि अगर ये हकीकी मानों में इस्लाम के नूर से मुज़य्यन हो जाए और अहमदी मुसलमान दावत अल्लाह का काम अच्छी तरह शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला के फजल से इसका फैज़ सिर्फ इंडोनेशिया के दायरे तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि तमाम मशरिक़ बईद के ममालिक तक पहुँचेगा। इसलिए ये दोनों ममालिक बहुत ही अहमियत रखते हैं, और दोनों अब तक का तजर्बा यही है कि तबलीगी नुक्ते निगाह से बेदार नहीं हो सके, बहुत पीछे हैं। कोशिश जारी है, कई किस्म के ज़राए अख्तियार किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी कुछ कमी रह जाती है। इससे मुतालिक तफसीली हदायत मैं अपने अमेरिका दौरे के दौरान भी दे चुका हूँ, और मुख्तलिफ वक्तों में मैं जमात को खुतबात में दावत अल्लाह के मज़मून से आगाह करता रहता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि उन पर अगर गौर किया जाए, उन बातों पर जो पहले कही जा चुकी हैं, तो मज़ीद नसाहे के इजाफे की ज़रूरत नहीं। پہلی باتوں پر ہی عمل کا وقت چاہیے, عمل کی طرف توجہ چاہیے, اور ان باتوں پر جنہوں نے عمل کیا ہے اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے انقلابات برپا ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ افریقہ میں بھی بعض ممالک نے جب عمل کیا تو ان کی سالانہ بیعتوں کی رفتار ہزاروں سے نکل کر لاکھوں کے دائرے میں داخل ہو گئی. اب یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے. بعض دوسرے ممالک تھے جو اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے حالات مختلف ہیں, یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور 1200 پہ راضی تھے. اور میں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی, میں نے کہا ناممکن ہے کہ نہ ہو سکے. تم غور کرو, سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں, اس پر عمل تو کر کے دیکھو. اور اب ان میں سے ایک ملک جو یہ کہا کرتا تھا کہ نہیں جی ہمارے تو یہی حالات ہیں, ان کی طرف سے کل خوشخبری ملی ہے کہ اب وہ لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور بھاری امید ہے کہ انشاءاللہ سال کے اختتام تک وہ بھی لاکھ, ایک سال میں 1,00,000 مسلمان اور احمدی بنانے والوں میں داخل ہو جائیں گے. مسلمان اور احمدی دراصل تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, مگر مسلمان اور احمدی یہاں اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس علاقے میں مشرک بہت ہیں, عیسائی بہت ہیں, اور پہلے ان کو مسلمان بنانا ہے, اسلام میں داخل کرنا ہے, پھر احمدیت کے رنگ چڑھانے ہیں جو حقیقی اسلام ہے. تو اس پہلو سے میں نے دو الگ الگ لفظ بولے ہیں, ورنہ حقیقت تو ایک ہی ہے, احمدیت حقیقی اسلام ہے اور اسلام حقیقی احمدیت ہے. اب میں حق کے حوالے سے اس مضمون کو کچھ اور آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تو کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا, اور باطل کا کام ہی بھاگنا ہے. اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق آ جائے تو از خود ہی باطل رفع ہو جایا کرتا ہے, اور جو مثال سامنے ابھرتی ہے وہ سورج کی مثال آتی ہے, ابھرتے ہوئے سورج کی تصویر دکھائی دیتی ہے, کس طرح رات کے دھندل کے سورج کے نکلتے ہی غائب ہو جاتے ہیں, جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں اندھیروں کو وہ نور میں تبدیل کر دیتا ہے. تو کتنا آسان مضمون ہے. اگر یہ ویسا ہی آسان ہوتا اور یہی قرآن کریم کی مراد ہوتی تو ہر نبی کے آنے کے بعد کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں تھی. نبی حق لاتا اور خود حق ذات سے تعلق جوڑ کر حق بن کر دکھا دیتا, اور اچانک تمام ماحول روشن ہو جاتا, بغیر کسی جد و جہد کے حق کو غلبہ عطا ہو جاتا. یہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے. بعض صورتوں میں بعض پہلوؤں سے وہ مفہوم بھی ہے, لیکن کہاں وہ مفہوم ہے اور کہاں مختلف مفہوم ہیں ان پر میں اب گفتگو کروں گا. اور سب سے پہلے غیر کے مقابل پر, باطل کے مقابل پر حق کیسے اس کو بھگاتا ہے قرآن کے حوالے سے, اس پر میں مزید روشنی ڈالتا ہوں. کیونکہ دعوت اللہ تو دراصل حق کی طرف بلانا ہے, اور کیا کیا مشکلات اس راہ میں پیش ہیں. کیا اچانک سورج نکل آئے گا اور روشنی ہو جائے گی, یا اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. اول بات یہ ہے کہ وہ راتیں جو روحانی طور پر راتیں کہلاتی ہیں, جن میں عصیان اور خدا تعالیٰ سے دوری کے نتیجے میں اندھیرے پھیل جاتے ہیں, ان راتوں کو صبح کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ان راتوں کو صبح میں تبدیل کرنے کے لیے راتوں کو اپنے خدا کے تعلق کے نور سے روشن کرنا پڑتا ہے. یہ وہ نور نہیں ہے جو از خود ہی اٹھ کر باہر آ جائے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لیلۃ القدر کے حوالے سے یہی معنی رکھتا ہے. وہ اندھیری رات جس نے تمام عالم کو یکساں اندھیروں میں جھونک رکھا تھا, کہیں کوئی روشنی کا نشان باقی نہیں رہا تھا, وہ کیسے تبدیل ہوئی. ایک فانی فی اللہ اپنی راتوں کو جگا گیا, اور یہ اس کی راتوں کے جگانے کا سلسلہ تھا جو خدا کے حضور اس نے گریہ وزاری کی, اور حیرت انگیز طور پر راتوں کو دن کے بنانے کے لیے وقف کر دیا. وہ راتوں کا وقف تھا جس نے دن پیدا کیا ہے, اور جو سورج نکلا ہے وہ اس رات کی محنت کے بعد نکلا ہے. اور جب نکلا تو پھر وہ مضمون دنیا نے یوں دیکھا کہ جیسے اچانک سورج نکلا ہے اور روشنی ہو گئی, اور اس سے پہلے کی جو محنتیں تھیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی. جب اسلام غالب آ گیا ہے تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ اب کیا ہے, بس اسلام روشن ہو گیا, غالب آ گیا, آسانی سے سب باتیں حل ہو گئیں. لیکن کتنی بڑی جد و جہد تھی جس سے گزرنے کے بعد پھر وہ روشنی کا سورج طلوع ہوا ہے, اس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے, اور مختلف صورتوں میں حق کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ حق آنا اور باطل کا بھاگنا, یہ ایسا مضمون نہیں کہ ادھر حق نکلا ادھر باطل بھاگ گیا, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, ہم رسولوں کو سوائے اس کے کسی غرض سے نہیں بھیجتے کہ انہیں مبشر کے طور پر بھیجیں اور منذر کے طور پر بھیجیں, خوشخبریاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں. خوشخبریاں دن کی دیتے ہیں اور ڈراتے رات سے ہیں, لیکن جب وہ یہ کام کرتے ہیں وہ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لَيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ, تو یہ نہیں ہوتا کہ اچانک حق کی روشنی سے باطل بھاگ جائے, وہ جانے سے پہلے بڑی سخت جد و جہد کرتا ہے, پورے زور اور طاقت سے مقابلہ کرتا ہے. چنانچہ فرماتا ہے يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مجادلہ کرتے ہیں, اور مجادلے کا آغاز ان کی طرف سے ہوتا ہے, وہ کسی صورت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہاتھ پاؤں مارتے ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح اس روشنی کو بھگا دیں اور رات کو دائمی کر دیں. چنانچہ فرماتا ہے لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ وہ حق کو مٹا ڈالیں. بالکل برعکس مضمون ہے, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, لیکن جب حق آتا ہے تو اس سے پہلے مٹنے سے, باطل کے مٹنے سے پہلے کچھ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ باطل اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ جس طرح بھی بس چلے حق کو مٹا ڈالے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور ہمارے نشانات کو اور جس باتوں سے, جن باتوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ان کا وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں, ان کی تحقیر کرتے ہیں, تخفیف کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں, تو ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ حق مٹ جائے اور باطل باقی رہ جائے. تو اب دعوت اللہ میں یہ تصور کہ ادھر پیغام دیا اور ادھر لوگ مان گئے, قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا, بلکہ متنبہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو خوشخبریاں دو گے, تم ان کو ڈراؤ گے, لیکن وہ مقابل پر کوشش کریں گے کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اب احمدیت کے متعلق بالکل یہی ہے مضمون ہے جو صادق آ رہا ہے, 100 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم محض پاک نیتوں کے ساتھ دنیا کی بھلائی کے لیے ان کو اچھا پیغام دے رہے ہیں, جانتے ہیں کہ اس میں زندگی ہے, جانتے ہیں کہ اس میں دلوں کی سکینت ہے, اور ہر احمدی گواہ ہے کہ احمدیت سے باہر بے اطمینانی اور بے چینی ہے, احمدیت کے دائرے میں آ کے کایا پلٹ جاتی ہے انسان کی, ایک نئی دنیا میں بسنے لگتا ہے, ایسی دنیا جس میں بعض دفعہ باہر کے لوگ بھی جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہ تو ایک جزیرہ ہے, اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں, مختلف قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ جزیرے ہر جگہ بن رہے ہیں, اور ہر جگہ ہر ملک میں ان جزیروں کے دائرے بڑھ رہے ہیں, مگر کیسے بنتے ہیں, کیا جدوجہد ہوتی ہے, اس کی طرف بھی تو دھیان کرو, یہ اچانک کوئی تر لقمہ تو نہیں ہے جو منہ میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل زور لگاتا ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ تمہیں مٹا دے. چنانچہ جنرل ضیاء الحق جب زندہ تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا, تمام دنیا میں اس اعلان کو اخباروں میں شائع کیا گیا, یہاں ان کی امبیسی کے نمائندے نے लंदन में आकर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आकर ज़ियाउल हक़ साहब की तरफ से ऐलान पढ़ के सुनाया। उस ऐलान का खुलासा ये था कि मैं और मेरी हुकूमत इस बात पर तुले बैठे हैं, हम फैसला किए हुए हैं, हम तहिया किए हुए हैं कि अहमदियत के कैंसर की जड़ें उखेड़ कर फेंकेंगे, जहाँ जहाँ भी ये होगी तमाम दुनिया से इसकी जड़ें उखेड़ के फेंक देंगे। और वो कहाँ गया वो जड़ें उखेड़ने वाला, उसकी अपनी जड़ें उखेड़ी गई। उसके नतीजे में खुदा ताला ने उन मुतकबिरों से क्या सलूक किया जो अहमदियत के लिए मुखालफत में वक्फ हो चुके थे। और अहमदियत को देखें कि जगह जगह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो जड़ें कायम होती चली जा रही हैं। तो ये तो दुरुस्त है कि जाल हक़ व ज़ाहक़ल बातिल, जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, मगर नाम रखने से कुछ नहीं बनता। बातिल भी यही दावा लेकर उठता है कि हम हक हैं, तो बाज़ दफ़ा ज़ियाए हक़ नहीं होती, वो ज़ियाए बातिल होती है। और अल्लाह ताला ने इसी मज़मून को खोल कर बयान किया है, तुम ये आवाज़ देकर उठते हो कि हम हक़ हैं, हम आए और तुम मिट जाओगे। मुखालिफ कहता है हम हक़ हैं और हम फैसला कर चुके हैं कि तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। फिर अल्लाह की तकदीर कुछ फैसले करती है, कुछ वो हैं जो मिट से चले जाते हैं, कुछ वो हैं जो नश्व नमा पाते हैं और फैलते चले जाते हैं। और ये जो बात है ये हक़ ज़ात से होती है और हक़ से ताल्लुक़ के नतीजे में होती है, और हक़ से ताल्लुक़ के कुछ तकाज़े हैं जिनको बहरहाल पूरा करना होगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह जंगे बदर का ज़िक्र करते हुए कि तुम चाहते थे कि तुम्हारा मुकाबला निस्बतन छोटे काफ़िले से हो जहाँ फ़ायदे ज़्यादा हों और नुकसान कम हो, लेकिन अल्लाह का और मकसद था। अल्लाह का मकसद था कि उनकी ताकत के ऊपर ज़र्ब लगाई जाए और ताकतवर से तुम्हें भिड़ा दिया जाए, क्योंकि अल्लाह इस तदबीर से बातिल की जड़ें उखेड़ना चाहता था। अब मोमिनों ने तो आसानी चाही थी, वो तो ऐसा ज़ुहूर हक़ चाहते थे कि सूरज निकला और अंधेरे भाग गए, और इसमें हर्ज कोई नहीं अगर ऐसी ख्वाहिश की जाए। मगर किस तरह अल्लाह मिटाता है, मोमिनों को भिड़ाता है गैरों से और उनकी जड़ें उखेड़ देता है। फिर चुनांचे फरमाता है तवद्दून अन्ना गैर ज़ाति शौकत तकून लकुम, तुम चाहते थे कि तुम उनसे टकराओ जिनके पास हथियार ना हो, चुभने के लिए कांटे ना हों, चुभोने के लिए कांटे ना हों, कम से कम तकलीफ से तुम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा जाओ। وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو متحقق کر دے اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ حق کا غالبانہ ہوتا کیا ہے، کس طرح غیر معمولی مخالفانہ طاقتوں پر حق غالب آیا کرتا ہے اور جدوجہد کے نتیجے میں آیا کرتا ہے، از خود نہیں آ جایا کرتا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑیں کاٹ ڈالے۔ اس مقصد سے اللہ نے تمہیں طاقتوروں سے لڑا دیا۔ اب یہ ہے حق کا مضمون جو سمجھنے کے لائق ہے۔ طاقتور سے اگر کوئی لڑا دیا ہے، کسی کو لڑا دے تو کمزور کے لیے تو ہلاکت کا پیغام ہے، اور اگر طاقتور کسی کمزور سے لڑ پڑے اور اس کو مٹا دے تو اس میں طاقتور کے حق پر ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو خوب سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ حق کی باتیں کر رہا ہے، حق ہوتا کیا ہے اور اس کے نشان کیا ہیں۔ اب اگر ایک طاقتور دشمن اٹھ کر ایک کمزور سی جماعت کے متعلق فیصلہ کرے کہ ہم اسے مٹا دیں گے، اگر مٹا بھی دے تو طاقتور کا حق پر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن اگر مٹانے میں ناکام ہو جائے اور اگر جب بھی ٹکر لگے تو کمزور غالب آئے اور پھیلتا چلا جائے اور طاقتور سے مزید طاقتور ہوتا چلا جائے، یہ ہے حق کی نشانی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس جماعت کا حق ذات سے تعلق ہے۔ بس اگر حق سے تعلق ہو تو یہ فیصلہ कि कौन जीतेगा, ये हमेशा इस बात पर मुनसिर होगा कि किसका हक से ताल्लुक है। दुश्मन के ज्यादा या कम होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और जब दुश्मन इतना ज्यादा हो कि किसी की तौफीक ना हो कि खुदा के बनाए हुए कवानीन को तोड़े बगैर वो दुश्मन पर गालिब आ जाए, तो अल्लाह ताला खुद अपने कवानीन नहीं तोड़ता। ये नहीं कहा करता कि हक है, इसने गालिब आना है, अचानक इसको सब दुनिया से लड़ा दो। फिर तदबीर फरमाता है, और एक दूसरी आयत में मैंने ही यही मजमून खोल कर बयान फरमाया है कि हक जब आता है तो फिर क्या कुछ होता है। फिर अल्लाह युदब्बिरुल अम्र करता है, मुदब्बिरुल अम्र बन के जाहिर होता है। वो फिर तदबीरें इख्तियार करता है, और एक वक्त में अपने बंदों को लड़ाता तो ताकतवरों से है, मगर इतने ताकतवरों से नहीं लड़ाता कि दुनिया का कानून तोड़े बगैर या खुदा का कानून तोड़े बगैर वो फतेहयाब हो जाए। इतने ताकतवरों से नहीं लड़ाता कि खुदा का कानून तोड़े बगैर ही वो फतेहयाब हो सके। मुराद ये है कि अगर खुदा ये फैसला करता है कि मोमिनों में आज इतनी ताकत है कि एक दो पर गालिब आएगा, और कल इतनी ताकत होगी कि एक दस पर गालिब आएगा, तो जब तक वो कल नहीं आता, जब तक मोमिन इतना ताकतवर ना हो जाए, उस वक्त तक एक को दस से नहीं बढ़ाता। और हमेशा ऐसी तदबीरें करता है कि दुश्मन अपनी गालिब ताकत के साथ हमलावर हो ही नहीं सकता। उनके इरादे बनते हैं, बिखर जाते हैं, उनको इकट्ठा होने की तौफीक नहीं मिलती। अगर वो कोशिश करते हैं इकट्ठा होने की तो आपस में उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये तदबीर से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं, मगर बंदे की तदबीर नहीं, ये हक़ की तदबीर है। और जब हक़ तदबीर करता है तो एक बात ज़ाहिर होती चली जाती है कि दिन ब दिन कमज़ोर लड़ता तो ताकतवर से है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ज़्यादा ताकतवर से लड़ने की उसमें सलाहियत पैदा होती चली जाती है। और ये मजमून आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और आपके ग़ुलामों के अमल से कतई तौर पर साबित होता है। इससे ये मुराद नहीं है कि अव्वलीन निस्बतन खुदा के कम प्यारे होते हैं, बल्कि ये एक और मजमून है जिसका मतलब ये है कि जब एक कमज़ोर को एक ताकतवर से लड़ाया जाए तो नफ्सियाती लिहाज से उसमें रफ्ता रफ्ता खुद एतमादी पैदा होती है, और यकदम ज़्यादा बड़े से लड़ने की उसमें सलाहियत नहीं होती। और अल्लाह ताला का कानून है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी वसत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। पर सबसे ज़्यादा तो ताकतवर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो मुजस्सम हक बन गए। अगर आसमान और ज़मीन पर एक हक था तो उसका बंदों में एक कामिल मजहर जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो सबसे ज़्यादा तो ताकतवर आपको होना चाहिए था, और आप ही थे, आप ही का हक था जो इर्द गिर्द फैल रहा था। और उस हक का जब गैरों से मुकाबला हुआ है तो अल्लाह जो अपने कवानीन के ऊपर खुद मुदब्बिर है, उसका ये फैसला था कि मैं इस हक को रफ्ता रफ्ता खोलूँ और आगाज़ में इतना मुकाबला करूँ करवाऊँ इनका कि मेरे इस कानून के ख़िलाफ़ ना हो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो उनकी मादी वसतों की बहस चल रही थी, रूहानी वसतों की बात नहीं हो रही थी। मादी लिहाज से वो कमज़ोर थे, रूहानी लिहाज से ऐसे ताकतवर थे कि उसके बाद कभी कोई नस्ल उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं आई। बस वो ताबईन जिनको बाद में एक और दस, एक के मुकाबले पर दस ही नहीं बल्कि बाज़ दफ़ा उनसे भी ज़्यादा पर फतूहात नसीब हुई, उनकी रूहानी फजीलत पर ये दलालत नहीं करता। ये बताता है ये मज़मून कि पहलों ने जब कुर्बानियाँ दीं और बड़ों बड़ों से भिड़ गए, कमज़ोर होने के बावजूद उनको फतूहात मिली, तो कौम की नफ्सियाती हालत में एक तब्दीली पैदा हुई है, कौम की नफ्सियाती हालत में खुद एतमादी पैदा हुई है। उनको जुरतें अता हुई और उनकी तौफीक बड़ी है। और जब ऐसा हो तो रोक का मजमून दाखिल हो जाता है। कुरान करीम ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये फरमाया है कि रोक की नुसरत अता फरमाएगी, यानी इस मजमून को इन लफ्ज़ों में नहीं मगर हदीस ने जो मजमून खोला है उसमें ये दो तीन मरतबा यही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है कि मुझे रोक की नुसरत अता की गई है। अल्लाह ने फरमाया कि तुझे रोक की नुसरत अता की गई है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को जो इल्हाम हुआ उसमें भी यही लफ्ज़ हैं कि रोब की नुसरत अदा की गई। तो ये जो रोब है ये रफ्ता रफ्ता बनता है, ये हवा है जो बन जाती है। जब ये हो तो फिर ताकतवर खुद कमज़ोर होता चला जाता है, उधर उसकी नफ्सियाती उलझन ये बन जाती है कि वो खौफ ज़दा रहता है, दिल में जानता है ये ताकतवर है, बज़ाहिर कमज़ोर भी हो तो इसने गालिब आ जाना है। जब ये दिल में यकीन पैदा हो जाए कि कमज़ोर होते हुए भी गालिब आ जाएगा तो उसकी सलाहियतों में कमज़ोरी आ जाती है। उसके बरक्स जो कमज़ोर है, जिसको पता हो कि खुदा का दस्तूर हमेशा से यही है कि हमेशा मुझे कमज़ोर होते हुए भी नुसरत अता फरमाता है, वो और ज़्यादा ताकतवर होता चला जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह खुदा दुश्मनों से कमज़ोरों को भिड़ाता है, तौफीक देता है। और हक जो है उसके दो पहलू हैं, एक खुदा का नूर होना, खुदा के नूर होने के नतीजे ही में अज़ाए बदन में तब्दीलियां वाक़िया होती हैं। और उम्मत मुस्लिमा के अज़ाए बदन वो सहाबा थे जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थे, उनमें जिस हक ने सरायत करके पाक तब्दीलियां पैदा फरमाईं और उन्हें एक अजीम ताकतवर कौम में तब्दील किया, उस तब्दीली की रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप ही थे जो हक के नुमाइंदा बनकर उनको हक में तब्दील कर रहे थे। बस जिद्दोजहद के बग़ैर तो गलबा हो ही नहीं सकता। लेकिन कानून यही है जो मैंने बयान किया है कि कमज़ोर पहले से बढ़कर ताकतवर होता चला जाता है, और कमज़ोर होने के बावजूद जब भी खुदा उसे गैर से भिड़ाता है उसको फतह अता फरमाता है, अपने मकासद में वो जीतता है और गैर हार जाते हैं। अब इन्होंने पूरी कोशिश की थी पाकिस्तान में, तमाम किस्म के कवानीन जो सोचे जा सकते थे अहमदियत की राह रोकने के लिए वो बना दिए, हर किस्म की सज़ाएँ जो पैगाम हक पहुँचाने के नतीजे में अहमदियों को मिल सकती थी वो दे दी गई, हाँ सब रास्ते रोक दिए गए, लिटरेचर की इशात बंद हो गई। मगर ये जो मज़मून है जाल हक व ज़हाक अल बातिल, ये कमज़ोरी में भी जलवागर होता है और बातिल की कोशिशों को खुदा नाकाम बनाकर दिखा देता है। बस आप देख लें, कोई एक ऐसा साल नहीं हुआ जिसमें नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अहमदी मुर्तदों की तादाद उनकी उन गैरों में से अहमदी बनने वालों से बढ़ गई हो। बहुत नुमाया फ़र्क रहा है हमेशा। फिर जो मुर्तद हुए वो तमाम तर वो हैं, उनकी सब की तारीख हमारे पास रिकॉर्ड में महफूज है, जो पहले ही नाम के अहमदी थे और किरदार के गंदे थे। कई किस्म की उनमें खराबियाँ, कई किस्म के फसाद थे, ना मस्जिदों में आने वाले, ना नमाजों के शौक़ रखने वाले, ना चंदों में की कुर्बानियों में आगे आने वाले। एक किस्म की जूठ थी जो साथ लगी हुई थी, और अल्लाह ने उनको जो कामयाबी दी है वो ये है कि हमसे बातिल को अलग करके उस बातिल में मिला दिया है। ये क्या कामयाबी हुई उनके लिए, मेरा मतलब है उनकी कामयाबी भी हमारी ही कामयाबी बनती है अगर हम में से अच्छे लोगों को खींच लेते हैं, जो जिनसे वो उम्मीदें लगाए बैठते थे कि बहुत अच्छे लोग हैं, जिन पर सोसाइटी की नज़र थी कि हाँ ये अहमदी तो हैं मगर हैं बहुत शरीफ, एक ही लक्ष्य के अहमदी हैं, उनमें से कितने उन्होंने लिए? एक भी नहीं लिया। तो ये जो बातिल के मुकाबले पर हक की कामयाबी का मज़मून है, इसका ये मतलब नहीं कि किसी जगह तुम्हारी मस्जिदें नहीं बर्बाद होंगी, किसी जगह तुम्हें जानी नुकसान नहीं पहुँचेगा, किसी जगह तुम्हें से किसी जगह से तुम्हें हिजरत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सारे वाक़यात अंबिया के साथ लगे हुए हैं। अगर बातिल के भागने का ये मतलब हो तो फिर तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सारे अंबिया को भागा हुआ शुमार करना पड़ेगा। अगर अंबिया की हिजरत ज़हाक़ल बातिल के मानों में ली जाए नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर सारे अंबिया बातिल बनते हैं। मगर कुरान करीम जब हक और बातिल के मुकाबले की तफसील बयान फरमाता है तो ऐसे मंतकी तौर पर दर्जा बदर्जा इस मज़मून को आगे बढ़ाता है कि इसके हर पहलू पर हर कदम पर एक देखने वाले को हक की फतह और बातिल का ज़ियान दिखाई देगा। उसका भागना हर मैदान से साबित होता चला जाता है। वो जो मुकाबला है वो क्यों है? सवाल तो ये है कि कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ के रखी सुनाई है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बातिल जहाद शुरू कर देता है किसी तरीके से हक को मिटा डाले और कुछ उसका बाकी ना छोड़े। ये जहाद क्यों होता है? ये दरअसल शिकस्त का एतराफ है। बातिल के जहाद का आगाज ही एतराफ शिकस्त है, क्योंकि अगर बातिल को ये खौफ हो कि बदियां ना फैल जाएं, गंदगी ना हो जाए, सोसाइटी गंदी ना हो जाए, झूठ फिस्क व फजूर माशरे पर कब्जा ना कर ले, तो वो तो पहले से ही है। वो था तो खुदा ने नबी भेजे और उसके खिलाफ माशरे ने कभी कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, उसको कबूल किए बैठा है। तो साफ पता चला कि बदियों से और बातिल से माशरे उस माशरे की जिसमें खुदा की तरफ से उसके पैगंबर आते हैं कोई लड़ाई नहीं होती, आराम से बैठे रहते हैं। लड़ाई उससे होती है जो आपकी अकदार पर हमला करता है, उन अकदार को मिटाता है, और खुदा की तरफ से आने वाला बदियों पर हमला करता है और नेकियों को फैलाने की कोशिश करता है। अचानक बातिल उठ खड़ा होता है और उसके मुकाबले पर जद्दोजहद शुरू कर देता है। ये एतराफ है कि हम बदियों के नुमाइंदा हैं, हम बदियों के अलमबरदार हैं और नेकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये भी एतराफ है कि ये नेकी गालिब आने वाली नेकी है, वरना उनमें हर किस्म के पागल, हर किस्म की बड़े मारने वाले तहरीकें हम शुरू करते हैं, उनकी मुखालफत नहीं होती। अब इस मज़मून को हज़रत ईसा के हवाले से समझें तो कितना खुल कर सामने आ जाता है। हज़रत ईसा अपने वक्त में हक़ के नुमाइंदा थे। जाल हक व ज़हाक़ल बातिल का मज़मून आप पर भी सादिक आता था और आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा ताला का ये दायमी ऐलान गलत निकलता है। ये नामुमकिन है कि खुदा का कलाम गलत निकले। बस कैसे हुआ वो मुकाबला, हक कैसे गालिब आया? सबसे पहले हक के गालिब आने की निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस इंतहाई जाहलाना और ज़ालिमाना मुखालफत में मिलती है। हक की कामयाबी का बाज़ार खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं। मैं कहा आवाज़ ना निकालें, आप आराम से इनको ले जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये मज़मून खूब खुल के सामने आ जाता है। मैं कहा तवज्जो छोड़ दें इस तरफ, वो आप ही संभाल लेंगे। तवज्जो इस तरफ करें, बीमार हो गए हैं उनको डॉक्टर मौजूद हैं, वो संभाल लेंगे इंशाल्लाह। हज़रत ईसा के ज़माने में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत हुई है उससे पहले यहूद में हर किस्म की बदियां फैल चुकी थीं, हर किस्म का फिस्क व फजूर जारी था और उनको कोई होश नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जो यकदम उठे हैं वो, तो उसकी वजह समझ नहीं आती, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम ये था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दिया करो। कोई तुमसे अगर जुबा मांगे तो कमीज़ भी उतार के दे दो। अजीब सा पैगाम था, और इस पैगाम में कोई भी गुस्सा दिलाने वाली बात थी ही नहीं। अगर यह पैगाम आम हो जाता तो यहूदियों को क्या तकलीफ थी, वो कमीजें मांगते तो जुबे भी साथ मिल जाते, जुबे मांगते तो कमीजें साथ मिल जाती, एक ईसाई बेचारे को एक थप्पड़ मारते तो वो कहते लो दूसरा भी गाल हाजिर है थप्पड़ मार लो। उसके बावजूद वो मुश्तहिल हो गए, उसके बावजूद वो एक हो गए, बावजूद इसके कि उनके दिल फटे हुए थे, सदियों से एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन हजरत मसीह की मुखालफत में एक हो गए, क्योंकि वो उनके दिल गवाह बन गए थे कि ये पैगाम गालिब आने वाला पैगाम है, हक है। अगर हक ना होता और उनके दिलों को यकीन ना होता कि हक है तो कभी उस किस्म की जाहिलाना मुखालफत ना करते। और हर नबी के हक होने के सबूत में इसी किस्म की मुखालफत हमेशा उसके हक में एक रोशन निशान बनकर उभरा करती है। तमाम अंबिया की ये मुश्तरक कहानी कह दें या एक ऐसी तकदीर है उनकी जो सब अंबिया के हक में खुदा की तरफ से बराबर जारी हुई है कि उनके पैगाम में हकीकत में कोई गुस्सा दिलाने वाली बात हो नहीं सकती, ना थी। और आपस में लड़ते हुए उनकी मुखालफत में एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और ऐलान करते हैं कि हाँ हम लड़ा करते थे, जानते हैं हम एक दूसरे को काफिर कहते थे, वो सारे एक दूसरे को काफिर कहा करते थे जो 72 फिरके यहूद के थे, और हम एक दूसरे की जान के भी दुश्मन थे, मगर अब तो देखो हम सब इकट्ठे हो गए हैं और तुम्हें मिटाने के दरपाए हैं, तुम्हें मिटाने की खातिर इकट्ठे हुए हैं। बहने ही जैसे 74 का वाकया हुआ है उसी तरह यहूद की एक मजलिस बैठी, उसमें तमाम फिरकों की नुमाइंदगी हुई और उन्होंने मिलकर यह कहा कि हम सारे इकट्ठे होकर ईसाइत को दायरे इस यहूदियत से खारिज करते हैं, आज से इनका यहूदियत से और मूसा के मजहब से कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहा। ये वाकया तारीखी वाकया है जिसको सारी दुनिया के मौरखीन तस्लीम करते हैं। ये वाकया क्यों वहां पेश आया जबकि ईसाइयों बेचारों की तो हालत ये थी कि मारे खाते बुरा हाल, उनके जो दावेदार था मसीहत को उसको सलीब पर लटका दिया गया और फिर उन लोगों को कुछ पता नहीं रहा कि फिर वाकया क्या हुआ, ये अलग बहस है, पर कमजोरी का ये आलम था और दरवेशाना जाते थे, कत्ल होते थे, लूटे जाते थे, इनसे डर क्या था उनको, एक ही डर था कि जाल हक हो, हक आ चुका है, दिल गवाह थे कि जहाक अल बातिल, बातिल ने भागना ही भागना है, यही खौफ था। जब दोबारा दामन गिर हुआ दूसरे मसीह के वक्त तो बैने ही वही हरकतें शुरू हो गई, और ये जो ऐलान था कि हम इनको मिटा के छोड़ेंगे, सिर्फ ये नहीं हुआ, 72 फिरके इकट्ठे हो गए, इनकी भी एक काउंसिल बुलाई गई और 1974 का साल गवाह है कि उन्होंने ये ऐलान किए कि ठीक है हम लड़ा करते थे, ठीक है शिया सुन्नी को बर्दाश्त नहीं करते थे, सुन्नी शिया को नहीं बर्दाश्त करते थे, वहाबी अहले सुन्नत को मुशरिक कहा करते थे, अहले सुन्नत वहाबियों को गुस्ताखे रसूल कहते थे, ये सब कुछ था, लेकिन हम सारे कभी एक फिरके के खिलाफ कभी इकट्ठे नहीं हुए, वो ये कहते थे। और 74 में इसका जिक्र किया गया, जो मैं बात बयान कर रहा हूँ इसका बार बार 74 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस को जितलाया गया, ये बात जितलाई गई कि देखो तुम ये ना कहो कि हम भी लड़ते हैं, हम भी मुखालिफ थे। तमाम तारीख इस्लाम ने एक दफा साबित करके दिखाओ कि 72 फिरके इकट्ठे हो गए, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तारीख के हवाले की जरूरत थी, बाद में हम कहेंगे तो तुम नहीं मानोगे, और यही तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाहते थे कि आज पहली दफा यह वाकया हुआ है कि 72 एक हो गए हैं और एक को निकाल के बाहर किया गया है। लेकिन डर क्या था, वो कहते थे ये शिरमजतुन कलीलून, भुट्टो साहब का ऐलान था ये तो छोटे से जलील से लोग हैं, ये हमें गुस्सा दिलाते हैं, अगर हमें गुस्सा ना दिलाते तो हमें ये इतना सख्त मेजर इनके खिलाफ ना लेना पड़ता, इतना बड़ा इकदाम ना करना पड़ता। बैन यही बात जियाउल हक ने कही कि हम क्या करें जब वो वहाँ तो नहीं लोगों को ये कहते थे, मगर जब गैर कौमें उनको लिखती थी कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम्हें क्या हो गया है, एक तरफ कहते हो छोटी सी जमात है, 30 लाख तो दरकिनार, 1 लाख भी नहीं है, ये ऑफिशियल इनकी इतलाएँ थी जो गैर कौमों को दे रहे थे। अब 30 लाख पर तो हमें कोई इसरार नहीं, 3 लाख भी हों इससे कोई बहस नहीं, जितने थोड़े थे उतना ही बड़ा सबूत है कि ये हमें हक समझ रहे थे, जितने थोड़े थे उतना ही ज्यादा इनका खौफ इनको मुल्ज़म कर रहा था। तो जब ये सवाल किया गया कि थोड़े से तो हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, उन्होंने कहा हमें गुस्सा दिलाते, ये बड़ी मुसीबत है, छोटे से हैं थोड़े से हैसियत ही कोई नहीं, वो गुस्सा दिलाने में बड़ा शेर है, गुस्सा दिलाते कैसे हैं, कहते हैं गालिब आ जाएंगे और आ रहे हैं, ये बात थी जो तकलीफ देती थी, थोड़े हैं कमजोर हैं हैसियत नहीं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं, लेकिन गालिब आने के जरिए गुस्सा दिलाते हैं। सारा जोर इस बात पर था कि जब भी हम इनसे टकराए हैं ये बड़े हैं और हम कम हुए, तमाम नफ्सियात मुल्ला की इसी इस एक मरकजी नुक्ते के गिर्द घूमती है। हर दफा उसने कोशिश की कि किसी तरह हक का बढ़ना और बातिल का भागना, ये जो तकदीर है इसको उलट कर रखा रख दें, किसी तरह कोई ऐसा जरिया अख्तियार करें कि बातिल हक का आगे बढ़ना बंद हो जाए और बातिल का पीछे हटना रुक जाए, लेकिन हर तदबीर उल्टी पड़ी। यहां तक कि 1974 आ गया, ये ऐलान कर दिया गया कि अहमदी सारे गैर मुस्लिम हैं, हम 72 एक तरफ ये एक तरफ। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ कुरान करीम की आयत की सदाकत का निशान, वो ये है कि बज़ाहिर कमज़ोरी में भी एक ऐसा हक की अजमत का निशान है कि यकीनन कहा जा सकता है कि जाल हक व ज़ाकल बातिल, हक आ गया और बातिल भाग गया, क्योंकि भागने के पेश खेमे ही तो हैं, ये पेशबंदियाँ करना, ये कानूनी तौर पर रोके खड़ी करना, ये मुखालफतों की दीवारें खड़ी करना, ये जुल्म व तादी और इस्तेदाद के ज़रिए एक बढ़ती नशो नमा होती हुई कौम को कुचल कर रख देने की कोशिश करना, पांव तले रौंदने की कोशिश करना, किस बात का खौफ था। हर दिल गवाह था, आज भी है, ये तमाम मौलवी जानते हैं कि अगर हुकूमत के हमें सहारे हासिल ना हो, अगर हमें झूठ के सहारे हासिल ना हो, अगर हम आवाम को इनके खिलाफ मुश्तैल ना करें तो कल की बजाय आज हमें खा जाएंगे। तो कुरान देखो कैसा सच्चा है, जाल हक वज़ाक अलबातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, बातिल के मुकद्दर में तो भागना ही भागना है। और यही गवाही वो जिद्दोजहद उस जिद्दोजहद का आगाज करती है जिसके मुतल्लिक कुरान हमें मुतनब्बे करता है, पहले दिन से ही तुम्हारे गलबे के आसार देख लेंगे और पहचान लेंगे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक होंगे उस वक्त भी उनको गालिब समझा जाएगा, वो जानते होंगे कि ये एक है जो तमाम दुनिया पर भारी उतरेगा, इसलिए उस एक को मिटाने के दरपे हो जाएंगे और उनकी आंखों के सामने वो एक बढ़ता चला जाएगा। बस एक ही बात दुश्मन की सच्ची निकलती है और हमेशा सच्ची निकलेगी कि हक दूसरों के पास है, हक मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके गुलामों के पास है, हक अंबिया के पास है और वो हक से आ रही हैं। ये जो दिल की आवाज़ है, दिल की पहचान है, ये हमेशा सच्ची रही है और हमेशा सच्ची रहेगी। मगर इसके साथ एक और भी मज़मून वाबस्ता है कि हक तब तक रहोगे जब हक से ताल्लुक़ होगा, जहाँ हक से ताल्लुक़ रख टूटा वहाँ हक के मुतल्लिक खुदा की एक गवाही तुम्हारे हक में सादिकाना बंद कर देगी कि हक आएगा और बातिल भाग जाएगा। बस जहाँ हक से ताल्लुक़ में कमज़ोरी है वहाँ गलबे के मज़मून में भी उसी हद तक कमज़ोरी पैदा हो जाती है। अगर मुआशरे ऐसे हों कि लोग दुनियादार हो चुके हों, अगर मादा परस्ती गालिब आ गई हो, तो अचानक ज़िंदगी के फुकदान के आसार ज़ाहिर नहीं हुआ करते, लोग सांस लेते हैं और लेते चले जाते हैं, ज़ाहरी तकाज़े ज़िंदगी के भी पूरे करते हैं, देखने में अच्छे भले चलते फिरते ज़िंदा इंसान दिखाई देते हैं, मगर बुनियादी तौर पर उनका हक से ताल्लुक़ इस हद तक कमजोर जरूर पड़ चुका होता है कि उनके हक में खुदा की यह गवाही पूरी नहीं होती कि जाल हक व जाकल बातें। बस दावत अल्लाह का राज इसमें है कि तुम अपना ताल्लुक हक से जोड़ लो और ऐसा गहरा पैबंद करो कि तुम पर हमला हक पर हमला हो। कोई तुम्हें टेढ़ी आंख से देखे तो गोया वो खुदा को टेढ़ी आंख से देख रहा है, तुम्हारे मुकाबले के लिए उठे तो खुदा से मुकाबला करने के लिए उठा हो। यही ऐलान है जो बड़ी तहदी से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया, ए आंख सुय मन बे दवीदी बसत तबर अज बाग बां बे तरस के मन शाख मुसमरम। तुम क्या समझते हो कमजोर सी शाख मुझे बना रखा है तुमने? शाख हूं, कमजोर हूं, मुझ में दिफा की ताकत नहीं है, ठीक है, लेकिन अज बाग बां बे तरस के मन शाख मुसमरम। बागबान से डरो क्योंकि मैं फलदार शाख हूं और फलदार शाख की हिफाजत करना बागबान की जिम्मेदारी हुआ करती है। बस जहां आप फलदार शाख बनेंगे वहां अल्लाह लाजिमन आपकी ताईद में खड़ा होगा, वहां लाजिमन दुश्मन की हर कोशिश आपके मुकाबले पर नाकाम बना देगा। मगर हक से ताल्लुक कायम होगा तो ये बातें होंगी। इस सिलसिले में कुरान करीम ने जहाँ मुख्तलिफ पहलू बयान फरमाए हैं बाद आयात के हवाले से मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो मैंने बयान कर दी कि टकराता ज़रूर है अल्लाह ताला और उनसे टकरा देता है जो बज़ाहिर ताकतवर हैं, होते भी ताकतवर हैं, और जाल हक व ज़ाकल बातिल का सबूत ये पेश करता है कि कमज़ोर ताकतवर को खाता चला जाता है, उस पर गालिब आता चला जाता है। दूसरी जगह फरमाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, फलम्मा जा सहरा तो काला लहु मूसा अल्कू मान तुम अल्कून फलम्मा अल्को काला मूसा माजे तुम बेहि सहर इन अल्लाह सयुक्त लहु इन अल्लाह ला युसलिहु अमल अल मुफ्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक्का बे कलिमात ही वलौ करहल मुजरिमून। कि जब वो जादूगर मूसा के सामने आए तो मूसा ने कहा अल्कू मान तुम मुल्कून, जो कुछ तुमने डालना है डाल दो, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल फेंको। फलम्मा अल्को काला मूसा माजे तुम बेहिस्सेर, जब उन्होंने निकाल फेंका तो मूसा ने कहा ये तो जादू है और यहाँ जादू का माना है झूठ, फसाद, बेहकीकत बात, ऐसी चीज़ जो नज़र को धोखा देने वाली है लेकिन हकीकत में उसकी माहियत और है। व युहिक्कुल्लाहुल हक्का बे कलिमात ही बलो करे हल मुजरिमून, और मुजरिम लोग खा नापसंद करें अल्लाह अपने कलिमात के ज़रिए हक को मुतहक्क़ कर दिया करता है और साबित करके दिखा देता है। अब वहाँ देखें क्या वाक़या हुआ। जो सहर था उसकी हकीकत ये थी कि जो रस्सियाँ जादूगरों की तरफ से फेंकी गईं वो सांप नहीं बनी थी, वो सांप दिखाई देने लगी थी, और जो मूसा ने असा फेंका था उस असा की बरकत से अल्लाह ताला के गालिब कानून ने जो इंसानी नफ्सियात पर गालिब है उस खौफ को दूर कर दिया अचानक, और जादू का असर जाता रहा। उन्होंने देखा तो वो रस्सियाँ ही रस्सियाँ थीं, सांप था ही कोई नहीं। तो हक से अगर ताल्लुक पैदा हो तो एक हौसला और जुर्रत पैदा होती है, और दुश्मन की भभकियों को आप खोखला और बेमानी और बेहकीकत देखते हैं। इसीलिए हज़रत मूसा को अल्लाह ताला को बार बार ये कहना पड़ता है ला तखफ, डरना नहीं। बातें ऐसी थीं जो डराने वाली थीं। अपने हाथ का सोटा ही असा बन के उभरता है, दूसरे दुश्मन जो रस्सियाँ फेंकते हैं वो सांप दिखाई देने लगते हैं तो बेचारे डरते क्यों ना। उनका डरना उनकी सच्चाई से ताल्लुक़ रखता था। साफ दिल पाक अंबिया होते हैं, वो दुश्मन के फरेब को बतौर फरेब नहीं समझते शुरू में, जो देखा अपनी सच्चाई की वजह से कहते हैं ऐसा ही हुआ होगा, जो सांप देखा तो सांप दिखाई दिया। ये दिल की सदाकत है असल में। अल्लाह जो जानता था उस हकीकत को, उसने कहा कि डरो नहीं, देखो तो सही, अपना असा तो फेंको, फिर देखना क्या होता है। जब असा फेंका गया तो रस्सियाँ रस्सियाँ दिखाई देने लग गईं। तो अगर दुश्मन से जब टक्कर होती है, उसके भभकियों से आप मरूब हो जाते हैं, वो कहता है मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और आप समझते हैं कि ओहो ये तो बड़ी गलती हो गई, पीछे हटने लगते हैं, बुजदिली दिखा जाते हैं, तो फिर आप कामयाब मुबल्लिग नहीं बन सकते। कामयाब मुबल्लिग बनने के लिए हिकमत तो है, लेकिन बुजदिली नहीं है। जहाँ तक हिकमत का ताल्लुक है, हर नबी को हिकमत अता होती है, इसलिए हिकमत से आरी होकर कोई तबलीग नहीं हो सकती, क्योंकि तबलीग के आगाज ही में अल्लाह ताला उदो इला सबील रब्बे का बिल हिकमत है की शर्त लगाता है, हिकमत से करो, लेकिन खौफ की कहीं कोई शर्त नहीं कि डरते डरते करना। खौफ को दूर फरमाता है, कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। देखो खौफ किस जोर के साथ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर उभरा था। आप नीचे गार में थे, ऊपर खौफ आया है और इस ताकत के साथ आया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कमज़ोर का साथ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को किसी पहलू भी बचा नहीं सकता था। और बचाना उन्होंने क्या था, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं ला तहज़न, तू गम ना खा, तू डर नहीं, फिक्र ना कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये है हक का साथ। कोई खौफ भी इंसान पर गालिब नहीं आ सकता अगर हक हकीकत में साथ हो, लेकिन हिकमत से काम लिया है, शोर नहीं मचाया, ये नहीं कहा कि हक मेरे साथ है, आ जाओ जो करना कर लो मेरा। जो लोग ये बातें करते हैं और दुश्मन को गुस्सा दिलाते हैं, उनको अगर ज़रर पहुंचता है तो हिकमत की कमी की वजह से पहुंचता है। बस हक कैसे काम करता है, हिकमत और तदबीर से आरी होकर नहीं, लेकिन हिकमत के बावजूद जब दिखाई देने लगता है कि अब कोई चारा ही नहीं रहा दिफा का, उस वक्त फिर वो मरूब नहीं होता, बल्कि जुर्रत से सर बुलंद होकर यह ऐलान करता है इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये ऐलान हजरत मूसा ने भी किया। एक तरफ दौड़ रहे हैं, फिरौन पीछे लगा हुआ है, और भागते चले जा रहे हैं और कहते हैं डरो नहीं घबराओ नहीं अल्लाह हमारे साथ। बज़ाहिर तो ये भागते हुए की आवाज़ में क्या जान हुई अगर वो कहे अल्लाह हमारे साथ है, मगर उस वक्त उनसे बच जाना ही गैर मामूली ईमान और यकीन को चाहता था। बच जाने पर एतमाद, गैर मामूली ईमान को चाहता था। और देखते देखते अल्लाह ने साबित कर दिया, ये कोई कमज़ोर भगौड़े नहीं है जो ताली कर रहे हैं कि खुदा हमारे साथ है। मूसा ने खुदा को साथ देखा था तो कहा था, और उसका साथ दुश्मन ने भी देख लिया, फिरौन पर भी जाहिर हुआ, उसकी कौम पर भी जाहिर हुआ। तमाम तारीख ने इस वाक्य को लिख लिया कि एक कमज़ोर खुदा का बंदा मूसा एक ताकतवर फिरौन पर गालिब आ गया और उसके लश्कर डूब गए। बस ये वो हक का साथ है जो हकीकी हो तो काम करता है, वरना सहर काम नहीं किया करता। अगर हक का साथ हकीकी ना हो, अगर आपको पूरा यकीन ना हो कि आप अल्लाह के साथ हैं और अल्लाह आपके साथ हैं, अगर हक की वो इलामतें आपके अंदर जाहिर ना हो जिनका मैं बाद में जिक्र करूँगा, तो उस वक्त तक आप दुनिया के सामने एक निडर और बेबाक दाहिर अल्लाह के तौर पर नहीं उभर सकते। और आपकी आवाज़ में अगर ताली होगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, वो सहर है, जादू के सिवा उसकी कोई हकीकत नहीं। जोर की आवाज़ उसी वक्त काम आती है जब उसके पीछे खुदा की ताकत बोल रही हो, और जब खुदा की ताकत बोलती है तो कमज़ोरों और नईबों की आवाज़ भी दुनिया की सबसे ताकतवर आवाज़ बन के उभरा करती है। इस पहलू से हक से ताल्लुक जोड़ो तो देखो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी तबलीग में कितने अजीम शान इनकलाबात बरपा होंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.